أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين أما بعد پیارے دوستوں اور ہمارے اس پروگرام کے تمام درشکوں آپ سبھی کو میرا پیار بھرا سلام. آج جب ہمارا یہ پروگرام ریکارڈ کیا جا رہا ہے تو یہ وہ تاریخ ہے جب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جنم دیوس ہے، جس کو تمام شیعہ اور مسلمان بہت ہی دھوم دھام سے منا رہے ہیں. ہم اس شبھ جنم دیوس کے اوسر پر آپ سبھی کے سیوا میں ہاردک شبھ کامنائیں پیش کرتے ہیں. پیارے دوستوں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ہم اپنے اس پروگرام میں احکام کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں. ہم نے اپنے پچھلے کچھ پروگرام سے نماز کے بارے میں اپنی بات چیت کو آرمبھ کیا تھا. ہماری وہ بات چیت ہوتے ہوتے اس جگہ تک پہنچی تھی کہ کون نماز میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو واجب ہیں، اور واجبات نماز کتنے پرکار کے ہوتے ہیں. ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں آپ کے سامنے بتایا تھا کہ واجبات نماز دو پرکار کے ہوا کرتے ہیں. کچھ وہ واجبات ہیں جو رکن ہوتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو غیر رکن ہوتے ہیں. رکن ان واجبات کو کہا جاتا ہے جن کو اگر بھولے سے بھی چھوڑ دیا جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. اس میں ہم نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ یہ پانچ چیزیں ہیں، جس میں سب سے پہلی چیز نیت ہے، اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام ہے، اور اس کے بعد دوسری چیزیں آتی ہیں. ہم اپنے آج کے پروگرام میں اسی بات چیت کو آگے بڑھائیں گے. ہماری سب سے پہلی بات چیت جو ہوگی وہ واجبات نماز میں رکن کے پہلی چیز کے بارے میں بات چیت ہوگی، اور وہ ہے نیت. ہم نیت کے بارے میں اپنی بات چیت کو یہاں پر آپ کے سامنے آرمبھ کریں گے. نیت کس چیز کو کہتے ہیں؟ نیت کا ارتھ یہ ہے کہ جب انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے تو اس کو یہ پتہ ہو کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، اور یہ ایک نیت جو ہے آرمبھ سے لے کر نماز کے انت تک بنی رہے. اور اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس اس نے نماز آرمبھ کی ہے وہ ایشور کے آدیش کا پالن کرنے کے لیے کیا ہے. یعنی نیت اس چیز کا نام ہے. یعنی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ایشور کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. اس میں جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس سمے انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے اس سمے نیت کے سمبندھ میں یہ آوشیک نہیں ہے کہ وہ ویکتی سوئم اپنی زبان سے نیت کرے. یعنی جیسے یہ کہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ، اس پرکار کی چیزیں زبان سے کہنے کی آوشیکتا نہیں ہے، بلکہ اگر دل میں ہے تو یہی کافی ہے. لیکن اگر زبان سے بھی انسان اپنی نیت کو ادا کر رہا ہے تو اس میں کوئی آپتی نہیں ہے، اور نماز اس کی صحیح ہوگی. اور اسی نیت کہتے ہیں ہمارے دل کا کسی طرف لگا ہونا. اسی لیے نیت میں جب انسان نے نماز پڑھی ہے تو اس وقت اس کے لیے آوشیک یہ ہے کہ جس سمے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے وہ نماز ایشور کے لیے ہو، ریاکاری نہیں ہونا چاہیے. اگر نماز کا پورا بھاگ ریاکاری کی صورت میں دوسرے کو دکھانے کے لیے، نماز کا کچھ بھاگ دوسروں کو دکھانے کے لیے پڑھا جائے جس میں ایشور کے لیے نیت نہ رہ جائے، تو اس کی پوری نماز باطل ہے، اس کو دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی. اس میں یہی نیت کے جو بھاگ میں آتی ہے، کبھی کبھی انسان جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو ہم نے کہا نیت ہونا آوشیک ہے کہ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں. کبھی کبھی انسان اس بات پر وش ہوتا ہے یا مجبور ہوتا ہے، کوئی ایسا کارن آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو اپنی نیت بدلنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے. پہلے کوئی نیت کر رکھی تھی، پھر کوئی نیت کرنے کی آوشیکتا پڑ جاتی ہے. تو کچھ استھان ایسے ہیں جہاں پر नियत को बदलना इंसान के लिए अनिवार्य और वाजिब है। वो कौन कौन से स्थान हैं हम आपके सामने अभी बयान करते हैं। सबसे पहली चीज़, जैसे अगर इंसान कोई इंसान असर की नमाज़ पढ़ रहा है और असर की नमाज़ पढ़ते पढ़ते उसको बीच में ये बात याद आई कि अरे हमने जोहर की नमाज़ पढ़ी ही नहीं थी और डायरेक्ट असर की नमाज़ पढ़ने लगे, तो अगर उसको असर की नमाज़ पढ़ते पढ़ते बीच में ये बात याद आती है कि जोहर की नमाज़ नहीं पढ़ी थी और असर की नमाज़ उसने शुरू कर दी है, तो उसके लिए आवश्यक है, वाजिब ये है कि उसी नमाज में अपनी नियत को बदल के जोहर की नमाज़ की नियत कर ले और उसके बाद अपनी नमाज़ को आगे बढ़ाए और नमाज़ उसकी सही है। या इसी में ऐसा भी हो सकता है कि इंसान असर की नमाज़ पढ़ रहा था, उसको याद आया कि मसलन वो नजिस था, उसका कपड़ा नजिस था, जिसके कारणवश उसकी जोहर की नमाज़ गलत थी। इस प्रकार की चीज़ें अगर पेश आती हैं किसी कारणवश, या उसकी नमाज़ नहीं पढ़ी थी या नमाज़ गलत थी, तब भी वो अपनी नमाज की नियत को बदलेगा और ये उसके ऊपर वाजिब है। और ऐसे ही अगर कोई इंसान ईशा की नमाज़ पढ़ रहा है और ईशा की नमाज़ पढ़ते में चौथी रकात में नहीं पहुंचा है और चौथी रकात में पहुंचने से पहले पहले यानी चौथी रकात के रुकू में पहुंचने से पहले उसको ये बात याद आ जाए कि उसने मान लीजिए मगरिब की नमाज़ नहीं पढ़ी थी, या मगरिब की नमाज़ पढ़ी तो थी लेकिन वो नमाज़ उसकी बातिल थी, सही नहीं थी, तो ऐसी अवस्था में उसके लिए वाजिब ये है, उसके लिए अनिवार्य ये है कि वो अपनी नियत को ईशा से बदल के मगरिब की तरफ करे और उसके बाद वो अपनी नमाज़ को पूरा करे और नमाज़ को पूरा करने के बाद ईशा की नमाज़ पढ़े। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है, अगर इंसान नमाज़ पढ़ते पढ़ते ईशा की नमाज़ पढ़ रहा था और उसको जब वो चौथी रकात के रुकू में पहुँच चुका था तब याद आया कि अरे हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी ही नहीं थी, या किसी कारणवश जो नमाज़ मगरिब की पढ़ी गई थी वो बातिल थी, तो अब वो क्या करेगा? तो उसके लिए हमारे फुकहा ये कहते हैं वो अपनी नमाज़ को पूरा करेगा, इसी ईशा की नियत के साथ पूरा करेगा और उसकी वो ईशा की नमाज़ सही होगी और उसके बाद उसको चाहिए कि वो मगरिब की नमाज़ पढ़ ले और यह काफ़ी होगा। तो ये वो स्थान थे जहाँ पर एक नमाजी के लिए, एक मुकल्लफ के लिए वाजिब है कि अपनी नियत को बदले। तो पहला स्थान वो हुआ जब उसने असर की नमाज़ में याद आया कि जोहर की नमाज़ नहीं पढ़ी थी या बातिल थी। दूसरा स्थान वो हुआ कि जब उसको ईशा की नमाज़ में ये याद आया चौथे रुकू से पहले कि मगरिब की नमाज़ नहीं पढ़ी थी या बातिल थी। ये वो स्थान थे जहाँ पर आवश्यक ये है, वाजिब ये है कि अपनी नियत को बदल के पहली नमाज की तरफ कर ले। इसके अलावा कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर अगर इंसान अपनी नियत को बदल ले तो कोई इश्काल नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। वो कौन कौन से स्थान हैं आइए हम आपके सामने बयान करते हैं। सबसे पहला स्थान ये है कि इंसान असर की नमाज़ जो उसकी पहले कज़ा हो रही थी वो पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते उसको याद आया कि हमने जोहर की नमाज़ जो कज़ा थी नहीं पढ़ी थी, तो उसको असर की नमाज से जोहर की नमाज़ की तरफ पलटना या नियत को पलटाना, इसमें कोई आपत्ति नहीं और ऐसा कर सकता है। इसी तरह ईशा की कज़ा नमाज से मगरिब की तरफ नियत को पलटाना, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं और ऐसा वो कर सकता है। या इंसान अदा नमाज़ पढ़ रहा था, अदा नमाज से अपनी कज़ा नमाज की तरफ अगर नियत पलटाना चाहे और कज़ा नमाज की तरफ नियत करना चाहे उसी नमाज के बीच में, तो इसमें भी कोई आपत्ति नहीं, कोई इश्काल नहीं और ऐसा कर सकता है। या इंसान अगर जमात पढ़ रहा था, जमात पढ़ते पढ़ते वो अगर अब ये चाहता है जमात के बीच में फुरादा की नियत कर ले तो वो ऐसा कर सकता है और इसमें कोई आपत्ति नहीं है, उसके लिए ऐसा करना सही होगा। लेकिन कुछ ऐसे स्थान हैं, तो पहले वो स्थान हुए जहाँ पर वाजिब था, कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर एक नमाजी के लिए नियत को बदलना सही नहीं है, वो अपनी नियत को बदल नहीं सकता है। सबसे पहले इंसान ये है कि इंसान जोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, अब जोहर की नमाज़ पढ़ रहा था, अगर वो जोहर की नमाज़ के बीच में चाहे कि अपनी इस नियत को बदल के असर की नमाज़ से कर दे, जैसे मान लीजिए ये हुआ था कि जोहर की नमाज़ उसने पहले पढ़ ली थी उसको याद नहीं था, फिर दोबारा उसने पढ़ना शुरू किया जोहर ही की नमाज़ की नियत से पढ़ने लगा, अब अगर वो नमाज़ के बीच में जोहर की नमाज़ से असर की नमाज़ की तरफ नियत पलटाना चाहे और उधर जाना चाहे तो इसके लिए सही नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। इसी तरह अगर मगरिब की नमाज़ पढ़ रहा था, मगरिब की नमाज़ के बीच में वो चाहे अपनी नियत को बदल के ईशा की नमाज़ उसी में पढ़ने लगे तो वो ऐसा नहीं कर सकता है, उसके लिए ऐसा करना सही नहीं होगा। या इंसान अगर फुरादा नमाज़ पढ़ रहा है, मस्जिद में था, कहीं था, फुरादा नमाज़ पढ़ रहा था, तो एहतियात मुस्तहब यह है कि अपनी उसी फुरादा नमाज को जमात की नियत में नहीं बदल सकता है, यानी उसी फुरादा नमाज से जमात में नहीं जा सकता है, नियत यहाँ पर बदलना उसके लिए सही नहीं होगा। या इंसान अगर मुस्तहब नमाज़ पढ़ रहा है तो यहाँ पर नियत बदल के वाजिब की तरफ जाना उसके लिए सही नहीं है, यहाँ पर भी नियत का बदलना सही नहीं होगा। या एक मुस्तहब नमाज़ पढ़ रहा था, उस मुस्तहब से दूसरी मुस्तहब नमाज़ की तरफ नियत बदलना चाहे तो ये भी सही नहीं होगा। या इंसान वाजिब नमाज़ पढ़ रहा था और उससे मुस्तहब की तरफ बदलना चाहे, वाजिब नमाज से मुस्तहब नमाज की नियत करना चाहे तो ये भी सही नहीं है। लेकिन ये कार्य यानी वाजिब नमाज से मुस्तहब की नमाज की तरफ जाना और यहाँ पर नियत का बदलना दो स्थानों पर मुमकिन है और वहाँ पर संभव है और वो सही होगा। पहला स्थान कौन सा है? पहला स्थान ये है कि जब इंसान जुमे का वक्त हो, यानी जुमे का दिन है, शुक्रवार का दिन है, शुक्रवार के दिन इंसान जोहर के समय नमाज़ पढ़ रहा है, तो जोहर की नमाज़ पढ़ते पढ़ते उसको उसमें बेहतर यह है, शुक्रवार के दिन बेहतर यह है कि इंसान अगर जोहर के वक्त जोहर की नमाज़ पढ़ रहा है तो बेहतर यह है कि उस दिन जुमे सूरह जुमा को पढ़े। अब अगर कोई इंसान शुक्रवार के दिन जोहर की नमाज़ पढ़ते समय सूरह जुमा को ना पढ़े, कोई दूसरा सूरह शुरू कर दे और सूरह दूसरा सूरह शुरू करके या उसको आधा समाप्त कर चुका हो या आधे से आगे बढ़ चुका हो, तो अब चूँकि आधा समाप्त कर चुका है या आधे से आगे बढ़ चुका है लिहाजा उस सूरह को छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए उसके लिए बेहतर ये है कि वो अपनी नियत को बदल दे, उस जुहर की नमाज़ को मुस्तहब नमाज की तरफ नियत को बदले और उसके बाद उस नमाज़ को तमाम करके दोबारा जुहर की नमाज़ पढ़े और उसमें सूरह जमा को पढ़े। और दूसरा समय कब है? दूसरा समय वो है कि जब इंसान नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हो चुका हो, दूसरी रकात हो, तीसरी रकात में ना पहुँचा हो, अभी तीसरी रकात के रुकू में ना पहुँचा हो और वो देखे कि मस्जिद में या कहीं और जमात की नमाज़ आरंभ हो चुकी। अब इसको इस बात का डर है कि अगर अपनी ये नमाज को समाप्त करे, नमाज को समाप्त करने के बाद जमात में शामिल होना चाहे तो तब तक जमात समाप्त हो जाएगी, जमात उसको नहीं मिल पाएगी, तो उसके लिए बेहतर ये है कि वो इंसान अपनी उस वाजिब नमाज को मुस्तहब नमाज की नियत की तरफ बदले और मुस्तहब नमाज करके उसका नमाज समाप्त कर दे और जमात में शरीक हो जाए। तो ये वो स्थान थे जहाँ पर पहले तो ये कि इंसान नियत नहीं बदल सकता है, लेकिन जब वाजिब से मुस्तहब की तरफ जाना चाहे तो दो ऐसे स्थान हैं जहाँ पर वो इंसान वाजिब से मुस्तहब की तरफ अपनी नियत को बदल सकता है, जो अभी हमने आपके सामने बयान किए। दूसरी चीज़ जो वाजिबात में से आती है, वाजिबात नमाज में से है और रुकन है, वो है तकबीरतुल इहराम। तकबीरतुल इहराम किसे कहते हैं? तकबीरतुल इहराम नाम है उस तकबीर का जिससे हमारी नमाज आरंभ होती है। इसको इहराम क्यों कहा जाता है? उसकी वजह यह है, उसका कारण यह है कि इसी तकबीर के बाद कुछ ऐसे कार्य हैं जो हम पहले तो कर सकते थे लेकिन अब हमारे ऊपर करना हराम हो गया है। जैसे जब तक ये तकबीर नहीं कही थी तब तक हम खा सकते थे, पी सकते थे, हंस सकते थे, रो सकते थे, चल सकते थे, फिर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, यानी वो कार्य जो हलाल थे कर सकते थे, लेकिन जैसे ही तकबीरतुल इहराम कह दी वैसे ही ये सारे कार्य हमारे ऊपर हराम हो गए। अब तब तक इंसान वो कार्य नहीं कर सकता है जब तक कि वो अपनी नमाज को समाप्ति तक ना पहुंचा दे। तो ये है तकबीरतुल इहराम का अर्थ और उसकी व्याख्या जो हमने आपके सामने अभी बयान की। अब तकबीरतुल इहराम के संबंध में कुछ अहकाम हैं जो हम आपके सामने यहाँ पर बयान कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि जिस समय इंसान तकबीरतुल इहराम कहना चाह रहा है तो उसके लिए आवश्यक ये है तकबीरतुल इहराम को अरबी में कहे, यानी अल्लाहु अकबर कहे, उसका अनुवाद ना करे। जैसे हिंदी में ये ना कहे कि ईश्वर सबसे बड़ा है या उर्दू में ये ना कहे कि खुदा सबसे बड़ा है, ये ना कहे, बल्कि अरबी में कहे अल्लाहु अकबर। दूसरी बात यह है कि जिस समय इंसान अल्लाहु अकबर यानी तकबीरतुल इहराम कह रहा है उस समय उसका बदन ठहरा हुआ हो, हिल डुल ना रहा हो। अगर हिलते डुलते बदन के साथ, शरीर के साथ ये कहा जा रहा है तो ये तकबीर सही नहीं होगी। तीसरी बात यह है कि जिस समय इंसान तकबीरतुल इहराम कह रहा है उसके लिए आवश्यक ये है कि कम से कम इतनी तेज़ आवाज़ में कहे कि अगर कोई शोर शराबा ना हो तो उसको स्वयं अपनी तकबीर की आवाज़ सुनाई दे, यानी बहुत धीरी आवाज़ में ना कहे। और उसके बाद जो चीज़ है ध्यान रखने वाली वो ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोग तकबीरतुल इहराम से पहले कुछ जिक्र पढ़ते हैं नियत करने के बाद, जैसे कुछ लोग अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी वातूबु इलैह कहते हैं या कुछ लोग आयत वगैरह पढ़ते हैं, तो बेहतर ये है कि जिस समय तकबीरतुल एहराम कही जा रही इसको पहले वाले ज़िक्र से मिलाया ना जाए, और उसके बाद ये तकबीरतुल एहराम में भी और दूसरी तकबीरों में भी ये चीज़ मुस्तहब है कि जिस समय इंसान तकबीर कहना चाहता है तो उसके लिए मुस्तहब ये है कि अपने हाथों को कानों तक उठाए, यानी ये जो अंगूठे हैं कानों की लवों के करीब जाएँ, ये करना मुस्तहब है। तो ये वो मसाइल थे जो तकबीर और नियत से संबंधित है जो हमने आपके सामने बयान किए। इसके बाद वो वाजिबात जो रुकन से संबंधित हैं कुछ और भी हैं जिनको हम अपने आगे किसी प्रोग्राम में बयान करते रहेंगे। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।